Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Chal chori karne ke. Bete ne bola ab nahi. Wo dekh raha hai. Bole duniya bhale hi na dekhe, lekin dekhne wala वो हैं। उसके पिता ने उस बच्चे को बहुत समझाया चलो चोरी करने के लिए, लेकिन उसने कहा नहीं, अब नहीं। सुना तो दोनों ने भी उस बात को, दोनों ने भी सुना था, बाप ने भी सुना था और बेटे ने भी सुना था कि वो हैं और वो सबको देखता है। लेकिन नारायण एक में बदलाव आया, परिवर्तन आया, उसको मालूम पड़ा कि वो देखने वाला, वो सबको देख रहा है, वो मेरे को भी देख रहा है। जब मैं चोरी करूंगा तो भी मेरे को देखेगा और उसका दंड मुझे देगा। ये गलत काम है, वो हम उससे बचकर हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर उस बच्चे ने कभी चोरी नहीं की, अपने पिता के चोरी के काम में कभी सम्मिलित नहीं हुआ। और वो पिताजी जो है ना, वो हमेशा चोरी करता रहा और वो लोगों को बोलता भी था देखने वाला, सबको देखता है, और उसके बाद भी चोरी भी करता रहा। बात उन्होंने सुनी थी और ज्ञान भी हो गया था, लेकिन आप उस दो ज्ञानों को क्या बोलेंगे? आप उस बच्चे को पूछना कि देखने वाला सबको देखता है, उसको तुमने देखा है क्या? वो बच्चा ये बोलेगा भले ही मैंने नहीं देखा है उसको, लेकिन वो मेरे को देखता है, वो मेरे को देख रहा है। एक महात्मा हुए बहुत ऊंचे, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, आंख से अंधे थे और वो हमेशा बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे, हमेशा जाते थे। जब भी वृंदावन में हो तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। किसी ने पूछा कि आप क्या करने के लिए आते हो यहां, आपको तो दिखता नहीं है, आप यहां आते हो? और वो बोलते थे कि मैं जा रहा हूं बिहारी दर्शन करने के। लोगों ने कहा कि आप क्या करने के लिए आते हो, आपको तो दिखता नहीं, आने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आना तो सार्थक है क्योंकि हम तो देख लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा भले ही मैं नहीं देखता हूं लेकिन वो तो देखने वाला है, भले ही मैं उनको देख नहीं पाता हूं लेकिन उनके सामने आता हूं तो वो तो देख लेता है, वो तो आंख वाला है, वो सबको देखता है। और जब मैं यहां आता हूं तो उनको मालूम होता है हां ये आ गया भैया। एक उपस्थिति देना है, एक हाजिरी देना है वहां। उस बच्चे के मन में गहरी आस्था कि देखने वाला वो है और वो सबको देखता है। सुना, दोनों ने भी सुना, लेकिन एक ज्ञान उसके जीवन में बदलाव लाया और दूसरा, दूसरे का ज्ञान बदलाव नहीं ला पाया। इन दो ज्ञानों को आप क्या कहेंगे? उस बेटे को जो ज्ञान हुआ ना, ये वास्तविक परोक्ष ज्ञान, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। आपको मालूम हो जाए कि खुफिया कैमरे आपको देख रहे हैं तो आपकी चाल ढाल में भी बदलाव आएगा। अब यहां पर सब जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और आप ऑफिस में बैठ करके सब आप देख सकते हैं और मालूम हो जाए कि सब मेरे को देख रहे हैं तो आपकी क्रियाएं नियंत्रित होगी, आपके मन पर भी नियंत्रण होगा और आपके तन पर भी नियंत्रण होगा, यहां तक कि आपके चलने पर भी नियंत्रण होगा, क्योंकि मालूम है कोई देखने वाला है। ऐसे आपको मालूम हो जाए कि देखने वाला वो ईश्वर है, भगवान है, सबको देखने, तो हमारी क्रियाओं पर नियंत्रण होगा कि नहीं? ये तो बहुत गहरी बात है। इसलिए परोक्ष ज्ञान बहुत बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम सामान्य हम समझते हैं परोक्ष ज्ञान, हो गया परोक्ष ज्ञान, ईश्वर है बोले हाँ परोक्ष ज्ञान हो गया, आत्मा परोक्ष ज्ञान हो गया, बाकी रह गया केवल अपरोक्ष ज्ञान। हम ये सोचते हैं, लेकिन जिस परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान भी बहुत कठिन है, इसलिए हम सामान्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान न समझे। किसी को ज्ञान हो गया भगवान है, मेरे को नहीं लगता है कि जब इतना भी ज्ञान हो गया कि मेरे को कोई देख रहा है तो आदमी की सारी उछल कूदे बंद हो जाती हैं, और आपको मालूम हो जाए कि देखने वाला ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है, इतना ज्ञान हो जाए तो फिर हमारी उछल कूद बंद होगी कि नहीं। परोक्ष ज्ञान जिसको हो जाए वो आदमी बहुत आत्मसंयम में चला जाता है, उसका मन शास्त्रीय हो जाता है, उसका मन परम धार्मिक हो जाता है, उसके द्वारा अब कोई गलत काम नहीं हो सकेंगे। अब वो ईश्वर का यंत्र बन जाता है, जैसे एक बहुत बड़े व्यक्ति के नेतृत्व में उसके साक्षी में आदमी नियंत्रित हो जाता है, जैसे बड़े आदमी के सामने उसके नीचे वाले सारे लोग नियंत्रित हो जाते हैं, बहुत नियंत्रित हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर के साक्षित्व में उसके अस्तित्व के बोध में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन नियंत्रित हो जाता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान होने के बाद अपरोक्ष ज्ञान होने की देर नहीं है। ज्ञान हुआ सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा, ब्रह्म है आनंदम विज्ञानम ब्रह्मा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्मा। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, अंत में संपूर्ण सृष्टि को अपने में मिलाने वाला जो ब्रह्म है, वही तत्व आकाशवत सर्वगतश्च नित्य सब जगह पर है, वो सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ स सर्वविद, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़े, एहसास होने लगा वो है, आपके सांसों में भी है, आपके आंख में भी है, आपके कान में भी, आपके भीतर भी बाहर भी सब जगह पर वो तत्व है। आपको उस परमात्मा के अस्तित्व की खुशबू मालूम पड़ने लग जाए, ये बहुत गहरा ज्ञान है। जैसे आपको एहसास होता है हवा है, आपको एहसास होता है, आपको एहसास होता है गर्मी है, आपको एहसास होने लगे कि वो तत्व है, अब केवल एक चीज बाकी रह गई कि वो चीज मैं हूं। परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान, आपको परोक्ष ज्ञान हुआ और अपरोक्ष ज्ञान किसी कारण से नहीं हो पाया तो पंचदेशीकार कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान होने वाले व्यक्ति को व्यक्ति की दुर्दशा नहीं होगी, वो सीधा ब्रह्मलोक चला जाएगा, ऐसा लिखा होगा। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद वो जो प्रतिबंध था, अपरोक्ष ज्ञान होने में जो प्रतिबंध था, उसकी यदि वासना कोई रह गई तो वो वहां पर पूर्ण करेगा, और उसके बाद फिर जब पैदा होगा तो ज्ञानी बनके ही पैदा होगा। यहां आने के बाद फिर उसको ज्ञान में विलंब नहीं होगा, वो तो क्यों लिखा था वाक्य कहीं सुन ले और तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाए, उसको बहुत ज्यादा फिर साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें परोक्ष ज्ञान तक ही पहुंचना है, सबसे बड़ी कीमती जो चीज है वो परोक्ष ज्ञान, ईश्वर के गहरे अस्तित्व का बोध होना ही हमारे जीवन की महत्वपूर्ण चीज, और बाकी दशमस त्वमसी तो बहुत छोटी चीजें हैं। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी ने ज्ञान का उपदेश कितना किया, बहुत थोड़ा सा उपदेश, और उतने उपदेश में उनका काम हो गया। एक आपके महाराष्ट्र में भी एक कोई महापुरुष हो चुके हैं, कौन से अच्छा निसर्ग दत्त जी महाराज, एक और भी एक हू एम आए, उन्होंने पुस्तक लिखी है, किसी ने मुझे को बोला था कि वो कहीं है और भी, वो भी बड़ी अद्भुत घटना है। वो पान बेचा करते थे, हो सकते हैं वो बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनका बीड़ी आओ बस वही 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 बस हमने सुना कि वही पान बेचते बीड़ी बेचते बनाते, ऐसा ही कोई छोटा मोटा काम था उनका, और एक बार कोई सिद्ध पुरुष पहुंच गए और अब अकाड़े का कोई साधु और वहां गए और उन्होंने उनको बोला कि भैया हमको पान नहीं खिलाओगे। उन्होंने पान खिलाया होगा या बीड़ी पिलाया होगा, वो प्रसन्न हो गए साधु और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा भैया इसका पैसा क्या दूं। उन्होंने कहा महाराज आपकी सेवा हो गई, क्या पैसा देना है, ये तो छोटी सी आपकी सेवा। तो महात्मा जी प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि भैया मैं बिना कुछ दिए ये चीज नहीं ले सकता हूं और मैं तुमको देता हूं। वहां इतनी योग्यता है नारायण, वहां इतना गहरा अस्तित्व बोध है, परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा और इतना अंतःकरण विशुद्ध है कि उन्होंने उनको उपदेश कर दिया तत्वमसि। जो तुम अनुभव करते हो ना हर जगह पर, जिस परमात्मा का आप अनुभव करते हो वो, और तुम अलग नहीं है, तुम देह से परे वो जो सर्वत्र चेतना वो तुम हो तत्वमसि। और उस व्यक्ति को उतने में ज्ञान हो गया और उसके बाद फिर जो काम करते रहे, जो धंधा करते रहे वही करते रहे, वर्षों बीते और उसी में मस्त रहते, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध, शोक मोह से मुक्त, और वहां कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, धीरे धीरे वो ऐसा ही होता है। जो साधक होते हैं ना वो पहुंच जाते हैं, फूल खिलता है तो भौरों को निमंत्रण देना नहीं पड़ता है और वो पता नहीं कहां से आ जाते हैं। आपके पास गुड़ हो तो चींटियों को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, मक्खियां अपने आप भिनभिनाने लगती, आपको मालूम ही नहीं पड़ता किधर से आ गए। ऐसे साधक लोग ना एकत्रित हो जाते हैं जहां पर वो ज्ञान की चेतना प्रकट हो जाए। एक कोई बहुत सुदूर देश का एक अंग्रेज व्यक्ति आ गया और उनकी दुकान के सामने बैठा रहता था और उनसे बुलवा लेता था और वो लिखता था। यहां के देश के लोगों को कुछ नहीं मालूम था और उस अंग्रेज ने फिर उन्हीं की पुस्तक लिखी हु आई एम आई और वो प्रकाशित हो गई, बड़ा प्रचार, वो विदेशी लोग आ जाते हैं और इनके दुकान के सामने बैठे रहते थे। हम लोगों से ज्यादा अलर्ट हैं वो अंग्रेज लोग सचमुच, उनके साथ केवल सत्वगुण, उस रजोगुण के साथ सत्वगुण जुड़ जाता था। अभी जहां बिहार योगा बिहार है ना, योगा स्कूल ऑफ बिहार, उसमें भागवती कथा थी, उनका एक और एक स्थान है रिखिया, तो मैंने देखा आप 50 अंग्रेज तो, और अपने लोग तो बीच में पानी पीने के लिए चले जाते थे, अपने लोग घूम के आ जाते कोई, और कई बार तो अपने लोग थोड़ा सा सोखे भी आ जाते, लेकिन मैंने देखा वो अंग्रेज सबसे आगे बैठे रहे, एक बच्चे बच्चे हाथ जोड़, मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। स्वामी जी ने उनको पूछा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, और आंखों में आंसू, बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हमको इतना मालूम है कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है, कोई बहुत बड़ी चीज बोली जा रही है, बोले इतना मालूम है, और उतने में ही अपने आप को समाहित कर, आश्चर्य। और वो बहुत सारे अंग्रेज वहां दुकान के सामने आके बैठे रहते थे, लोग समझते पता नहीं क्या है ये पागल लोग हैं, ये तो बीड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, इसमें क्या, इससे ज्यादा तो हम जानते हैं। और जब उन्होंने पुस्तकें लिखी और कुछ छोटा सेंटर भी बनाया कोई, तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, और उनको ज्ञान को पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं, गुरु ने एक वाक्य उपदेश किया और उनका काम हो गया। काम होने के लिए उपदेशों की कमी नहीं है, बीज की कमी नहीं है, जमीन की कमी है, क्या करेंगे, ऊसर भूमि है, क्या करें, वो जमीन ही ऐसी है, कितना भी अच्छा बीज डाले अंकुर पैदा भी होता तो यूं छोटा सा मरा मराया, वो टीबी के मरीज की तरह। और भूमि यदि तैयार है, खाद डाली हुई तैयार भूमि है, और उसमें आप कोई भी बीज डालो, कोई भी बीज डालो, यूं आपका वो बीज बहुत अच्छी तरह से पैदा हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है जादू की तरह। इसलिए ये जो परोक्ष ज्ञान है ना, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही सारी साधना है। भले हम तत्वमस्यादि महावाक्यों का विचार करते हैं, फिर भी परोक्ष ज्ञान को पाए बिना आप अपरोक्ष ज्ञान कैसे पाएंगे। तत्वमसी वो तुम हो, पहले उसका तो ज्ञान हो, उसका ही पता नहीं है। और हम बोले आपको कि वो तुम हो तो आप क्या कहोगे, पहले उसका तो पता हो। तत्त्वम असि वो तुम हो, लेकिन वो है कौन, उसका क्या पता है, उसकी क्या खबर है। यदि उसका ही पता ना, और मैं बोलूं कि वो तुम हो, वो तुम, मेरे को आप बोलोगे भैया वो कौन है, पहले वो तो बताओ तब मैं हम समझे कि वो तुम हो। इसलिए परोक्ष ज्ञान माने तत्का बोध, सर्वत्र जो परम तत्व परमात्मा ब्रह्म तत्व है, जो कण कण में विराजमान है, तत् एहसास हुआ सब उसका। और उसके बाद अरे बोले वही तुम हो, वो कोई अलग है, वो और तुम अलग नहीं हो, ज्ञान हो गया, एक रूप है हम। इसलिए तत् का जो बोध है गहरा अस्तित्व बोध, वो परोक्ष ज्ञान। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन जप ध्यान तीर्थाटन सेवा, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे अंतःकरण को निर्मल बना देती है। और जैसे जैसे हमारा अंतःकरण निर्मल होने लगता है, वैसे वैसे उसका बोध होने लगता है, वो है, वो है, वो है। आप उसके अस्तित्व को बहुत गहराई से अनुभव करेंगे आप। इसलिए परोक्ष ज्ञान किसी को हो जाए ना रहे, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई हो, बहुत बड़ी चीज हो गई हो। आप तो केवल 1% बाकी, जैसे हस्ताक्षर कर आपने पूरी बना के रखी है, क्या बोलते रजिस्ट्री पेपर बना के रखे, केवल हस्ताक्षर बाकी है कि नहीं। अब क्या करना है, केवल हस्ताक्षर करना है भैया, अंतिम अंतिम बस हस्ताक्षर हो गया और वो बात कंप्लीट हो गई। ये तत्वमस्यादि महावाक्य केवल हस्ताक्षर कर देते हैं, तुम हो, वही हो तुम तो हो ही पहले से, जो पहले से ही है उसको केवल जान लेते हैं हम। और उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद, फिर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अब मुक्त हो गया, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा। यहां जो कहते हैं ना पश्यति तम अक्रतु, आपको अक्रतु धातु प्रसादान, ये परोक्ष ज्ञान को पाने के लिए साधन है। अभी इसके ऊपर मैंने बहुत चर्चा की कल, अक्रतु अकाम निष्काम साधना जप ध्यान इंद्रिय निग्रह शम दम वैराग्य उपरत, ये सारी चीजें धातु प्रसाद है ये तम अक्रतु। और उसके बाद फिर महिमानम आत्मनः पश्यति, ये अपरोक्ष ज्ञान। और एक बार अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो आपका नंबर आया फिर शोकनाश वीत शोको, ये आपकी अवस्था है। परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान के बाद फिर शोकनाश। अब जीवन में कोई शोक नहीं है। अर्जुन ने कहा ना नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद फिर आप नष्टो मोह, सबसे पहली जो घोषणा है यही है शोकनाश, नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। और मोही तो नष्ट करना है, और क्या करना है। और एक बार मोह नष्ट हो गया नारायण, यही तो मोक्ष है, आनंदावाप्ति। आपकी अंतिम अवस्था बताई, शोकनाश और आनंदावाप्ति, ये मोक्ष रूप आए। वीत शोको, आचार्य यम ने कहा कि अब तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, जब उस आत्मा को आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे तो वीत शोको, और इसी के अंदर आनंदावाप्ति, शोक नाश हुआ। उसके बाद क्या है, आनंद ही आनंद ही तो है। एक ही श्लोक में उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी, ये 7 अवस्था। पहली जो 3 अवस्था है अज्ञान आवरण विक्षेप, ये बंधन रूपा है। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान ये साधन रूपा अवस्था है, और शोकनाश आनंदावाप्ति ये मोक्ष रूपा अवस्था है। तो साधक इन अवस्थाओं से गुजरता है, एक क्रमिक विकास है, धीरे धीरे अपने जीवन को ऊपर उठाते जाना है। और जब ये अंतिम दो अवस्थाएं प्राप्त हो गई, शोकनाश आनंदावाप्ति, अब साधक के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अब मुक्त हो गया है। और आपके वेदांत का चरम लक्ष्य भी यही है, मोक्षोपलब्धि। और इस मोक्षोपलब्धि तक पहुंचने का साधन आपको यहीं से, अभी जहां भगवान ने गीता जी में बहुत गहरी बात बोली, भगवान ने कहा कि तुम उठना चाहते हो तो तुम जहां हो वहीं से उठो, तुम चलना चाहते हो तुम जहां हो वहीं से चलो, संभव नहीं है, आप जहां नहीं है वहां से आप चलना शुरू करो। पहले हम देखें हम है कहां, और जहां है वहीं से। यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यतत। आप जहां हैं, आपको चलना शुरू करना है तो आप कहां से चलना शुरू कर सकते हैं? आप प्रेमपुरी में हैं तो आप चलना शुरू कहां से करेंगे? आपको यहीं से चलना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप प्रेमपुरी में हो और आप वृंदावन से चलना शुरू कर दो। लेकिन कई बार हम गड़बड़ करते हैं, हम होते हैं कहीं और चलना शुरू करना चाहते हैं कहीं, इसलिए जहां है वहीं से चलना शुरू करना है। वो हमारी योग्यता है। इसलिए देखें हम कौन हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारे अंदर कमियां क्या है, हम चल सकते हैं और हमारी चलने की योग्यता कितनी है, हम चल भी सकते तो हम कौन से रास्ते पर चल सकते हैं, और जहां पर है उसको गहराई से समझकर वहीं से साधना। यहां पर कूदने की नारायण, यहां दूसरे के रास्ते पर चलने की कोई साधना नहीं है। आपका जो भाव है अंदर, बस उसी भाव को आगे बढ़ाना है, आपके अंदर जो भाव है उसी भाव को आगे बढ़ाना है। और एक महत्व की बात, जो चीज आपको रसपूर्ण, सहज, सरल मालूम पड़े, आप समझना वो आपका स्वभाव है। आप जो चीज करने जा रहे हैं, जप करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, श्रवण मनन निरिध्यासन करने जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, और वो करते समय आपको बहुत सरल मालूम पड़े, सहज मालूम पड़े, सरस मालूम पड़े, तो आप समझना कि वो आपका मार्ग है। आपको बहुत आनंद आया जप में, ध्यान में, सत्संग में, समझ लो कि वो आपका मार्ग है। आपको कोई बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, वो आपका मार्ग है। थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी आप अपने भीतर उन्नति, विकास, आनंद, रस का अनुभव कर रहे, वो आपका मार्ग। इसलिए भगवान ने कहा कि आप जहां हैं वहीं से अपना चलना शुरू करो, और बिना चले विकास संभव नहीं है, बिना किए पाना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता जी में और हमारे शास्त्रों ने आपको उपदेश करते हुए कहा, आत्मावादी श्रोतव्यो, आपको श्रवण करना चाहिए, ऐसा बोला है, आपको करना चाहिए। आपको भगवान ने गीता जी में उपदेश करते समय भी कुरु शब्द का प्रयोग बहुत किया, करो 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 करो, बिना किए हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए साधना करने से होती है। हम केवल ऐसा सोचे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे या गुरु कृपा करेंगे तब हमको आत्मज्ञान होगा, ये बहुत बड़ी हमारी ये निकम्मी मनोवृत्ति है। हम बिना किए कुछ पाना चाहते हैं, और बिना कुछ किए पाने की भावना ये भ्रष्टाचार है, और ये निकम्मापन, आदमी जो भ्रष्ट होता है ना, यहीं से होता है। बिना श्रम, बिना मूल्य चुकाए खाने की भावना आदमी को भ्रष्ट बना देती है, और हर जगह पर आदमी ये सोचता है कि हमें कुछ करना न पड़े और गुरु सिर पर हाथ रख दे और हमको, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये बिना किए, बिना मूल्य चुकाए, आप बिना किए कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन हम सोचते जरूर हैं। इसलिए भगवान ने बार बार बोला करो करो करो, पुरुषार्थ करो। और श्रुति भी कहती है चरैवेति, चलो 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 आगे बढ़ो। ये साधना, जप, ध्यान, जीवन का परिमार्जन, परिशुद्धि, ये सारी चीजें हम जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे परोक्ष ज्ञान अंदर से उस परम तत्व परमात्मा की गहरी अनुभूति, उसका अस्तित्व बोध जगने लगता है, हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। और वो बदलाव केवल हमको ही नहीं मालूम पड़ता है, आसपास के सबको मालूम पड़ता है। आपकी हर चीज आसपास के लोगों को सूचना देती है, आपका जीवन ही सूचना देता है। ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, तमक क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मन। आप जानेंगे उसको, शोक मोह से मुक्त होकर आत्मरूप मोक्ष को प्राप्त करोगे। अगले श्लोक में आशीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आप उनकी एक अलौकिक अनिर्वचनीयता उस तत्व की उसका प्रतिपादन करेंगे। आप सीधे बैठ जाएं। ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 ओम शांति शांति शांति।